Welcome everybody. Welcome to Bakhabar episode 7. Episode 6 में हमने जैसे बात की थी कि हम आपको बिल्कुल आधे रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, रास्ता पूरा आपके साथ ही निपटाएंगे. और जो बात हो रही थी लास्ट एपिसोड में वो थी महंगाई के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर. ये अल्फाज, ये लफ्ज जो है आपने काफी दफा सुना होगा. तो हमने डिस्कस क्या किया लास्ट एपिसोड में, एंड यू शुड गो एंड वॉच इट इफ यू हैवंट ऑलरेडी, कि व्हाट इज इन्फ्लेशन, ठीक है, हाउ इज इट मेजर्ड, उस मेजरमेंट के चैलेंजेस क्या क्या हैं, सो थिंग्स लाइक दैट. वो इन्फ्लेशन मुख्तलिफ तबकात को कैसे असरअंदाज करती है, ठीक है, और आम इंसान की जिंदगी में जो अखराजात है वो उसका ब्रेकडाउन कैसा है. सो वी गेट अ गुड आइडिया ऑफ के इन्फ्लेशन एग्जैक्टली होती क्या है. नाउ व्हाट वी वुड वांट टू गेट इनटू इज के ये जो रोटी कपड़ा मकान और इसकी प्राइसेस की कहानी है, ये आती क्यों है इन्फ्लेशन. हमने शायद पहले एपिसोड में, इससे पिछले एपिसोड में आपको काफी डराया हो, लेकिन इन्फ्लेशन नेसेसरली इज नॉट अ बैड थिंग एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाई दैट इज द केस. बट आई थिंक दिस इज वेयर आई वुड सेगवे एंड गिव इट ओवर टू फेस टू गिव यू अ डीप डाइव, स्टार्टिंग ऑफ विद इन्फ्लेशन बुरा क्यों नहीं है. बहुत दफा
बिफोर आई टॉक अबाउट कि इन्फ्लेशन बुरी चीज क्यों नहीं है, हमने लास्ट टाइम ये भी बात की थी कि पाकिस्तान में क्लोथिंग एंड फुटवेयर पे खर्चा जो है कम हो गया है ड्यूरिंग द पेंडेमिक. तो अगर सब व्यूअर्स इधर पिछली एपिसोड को इसलिए भी चेक करनी चाहिए कि जाके देख चेक करें सैनन उस वक्त क्या पहना था और आज क्या पहना हुआ है. सो गिवन दैट ही हैजंट चेंज्ड क्लोथ्स इन अ वीक, हमें थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया है गुर्बत का और इन्फ्लेशन का, स्पेशली इन क्लोथिंग एंड फुटवेयर इन पाकिस्तान. लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने ये पहले भी बोल चुका है कि इन्फ्लेशन इज नॉट नेसेसरली अ बैड थिंग. क्योंकि आप फ्रॉम अ बिजनेस व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचें, हमने फ्रेंच फ्राइज वाले की सबसे आई थिंक पहली एपिसोड में बात करी थी कि अगर फ्रेंच फ्राइज वाला के अराउंड मोहल्ले की पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो वो फिर डब्बे महंगे बेचना शुरू कर देता है. बट ये भी तो हो सकता है कि वो बेटर क्वालिटी फ्राइज बेचना शुरू कर दे, राइट? अगर कोई मसाला फ्राइज, चीज फ्राइज, वैल्यू एडेड कोई अगर वो फ्राइज बेचना शुरू करे, सो बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस जनरली इकोनॉमी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जनरली पॉपुलेशन की प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छे होते हैं. तो हमें यह हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि प्राइस इंक्रीजेस नहीं होनी चाहिए या फिर अगर इन्फ्लेशन है तो बहुत ही बुरी चीज है. सम मीडियम अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज गुड फॉर इमर्जिंग मार्केट्स इन जनरल. डेवलप मार्केट्स में उनका टारगेट कोई 2% ऑफ इन्फ्लेशन के अराउंड होता है. हमारा पाकिस्तान का कोई 7-8% मीडियम टर्म टारगेट है इन्फ्लेशन का, जो कि थोड़ा ज्यादा है, इट शुड बी अ बिट लेस देन दैट. हमें जो जैसे आपने कॉजेज की बात करी, बहुत जरूरी है कॉजेज समझना. मैंने इस पे आई थिंक अब तो आर्टिकल लिख भी चुका है, तो थोड़ी बहुत ट्विटर स्पेसेस भी बात हो चुकी है. एंड आई थिंक जो स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी हो रही है की बातें हो रही है आजकल, अभी तक जो अमेंडमेंट इन डिस्कशन चल रही है उसकी जो डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी का कंपोनेंट है कि स्टेट बैंक उस पर फोकस करेगा, हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये समझना चाहिए कि क्यों होना चाहिए. लाइक हाउ, व्हाट विल स्टेट बैंक बी एबल टू कंट्रोल. तो इन्फ्लेशन ब्रॉडली अगर मैं पीछे हटके थोड़ा सा देखूं, दो तरीकों से होती है, ठीक है, किसी भी चीज की प्राइस या तो डिमांड की वजह से या फिर सप्लाई की वजह से चेंज होती है, ठीक है. इन इन वेरी सिंपल टर्म्स इन्फ्लेशन ओवरऑल जो कि प्राइस चेंजेस रिफ्लेक्ट करती है उसकी भी या तो डिमांड की साइड से चेंज आती है कोई या सप्लाई साइड से चेंज आती है. डिमांड साइड से जो इन्फ्लेशन का कॉज आता है इट्स कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. अब डिमांड पुल से होता क्या है कि ओवरऑल इकोनॉमी की जैसे अगर डिमांड बढ़ते रहे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे फ्रेंच फ्राइज वाले में मोहल्ले की पॉपुलेशन इंक्रीज होते रहे, तो फिर व्हाट डिमांड डज इज इट्स पुल्स प्राइसेस अप, इसलिए उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं. रिमेंबर इसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज जो है कि जब तक फ्रेंच फ्राइज वाला डब्बे उसकी कैपेसिटी, प्रोडक्टिव कैपेसिटी इतनी है कि वो लोगों को प्रोवाइड कर सके, उसको प्राइसेस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जब होती है, जब व्हेन द टोटल एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल डिमांड जिसको बोलते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को एक्सीड करेगी, राइट? अगर आपके पास स्पेयर कैपेसिटी पड़ी होगी, इन मोर रियलिस्टिक टर्म्स अगर फैक्ट्रियों में बेसिकली जगह है और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने की, तो फिर आपको प्राइस इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस गैप को, जो गैप जिसकी मैंने बात करी ना कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है और कैपेसिटी कम है, इस गैप को बोलते हैं आउटपुट गैप, formally it's defined as difference between potential actual GDP and potential GDP. ठीक है, पाकिस्तान की रिसोर्सेज अगर हम सारी ले रहे हैं, हमारी लेबर की रिसोर्स ले रहे हैं, कैपिटल की रिसोर्सेज ले रहे हैं, हमारी इनोवेशन ले रहे हैं, तो हमारी पाकिस्तान की एक पोटेंशियल जीडीपी है. स्टेट बैंक का एम या फिर और सारी गवर्नमेंट्स का एम जो होना चाहिए वो है इस पोटेंशियल जीडीपी के जितने करीब हो सकते हैं हो. अगर इस पोटेंशियल जीडीपी को एक्सीड कर दिया ना या फिर उससे बहुत ही कम हो गए, इन दोनों में मसले होते हैं. तो अगर हमने एक्सीड कर दिया इस पोटेंशियल जीडीपी को, इसको बोलते हैं पॉजिटिव आउटपुट गैप. और ये होता है जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है इधर, बिकॉज अगर एक्चुअल आउटपुट आपकी पोटेंशियल आउटपुट से ज्यादा है, इसका मतलब है कि आप यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ और डिमांड बहुत ज्यादा है आपकी, तो आपको प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती हैं. अब आइडियली इसका डेटा जो है ना आपके पास बहुत ज्यादा, लाइक यू शुड हैव दिस डेटा एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस. बाकी कंट्रीज में आपका ये आउटपुट गैप रिपोर्ट होता है ऑन अ क्वार्टरली बेसिस, पाकिस्तान में ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली नहीं होता. एनुअल फिगर्स भी बहुत कम स्टेट बैंक की कहीं ना कहीं रिपोर्टों में पता चल जाती है. तो आप अगर देखेंगे एंड यू स्टार्ट लुकिंग एट द डेटा, यू विल सी के हमारा कोई आउटपुट गैप नहीं था 2017-18 ऑनवर्ड्स. ये आउटपुट गैप स्टार्टेड इंक्रीजिंग 2018-19 में, जो हमने दारोनॉमिक्स की बात कर चुकी है पहले. उस जमाने में जब हम इम्पोर्ट कर रहे थे अपनी कंजम्पशन, डॉलर के साथ बहुत सारे मसले किए हुए थे, उसमें हमारा आउटपुट गैप पॉजिटिव हुआ. और फिर जाके जब हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे आ गए, तो फिर आउटपुट गैप वापस कम हो गया. आई डोंट थिंक, ये ग्राफ हम दिखा देंगे जस्ट टू शो यू व्हाट द डेटा लुक्स लाइक, आई डोंट थिंक ये पूरी पिक्चर दिखाता है बिकॉज ये सालाना नंबर्स ले रहा है. अगर आप इसको क्वार्टरली में ब्रेक डाउन करेंगे, और स्टेट बैंक ने कर चुका है एक जमाने में, आपको दिखेगा आपकी आउटपुट गैप वॉज अप टू 6% इन सम क्वार्टर्स. इसका मतलब क्या है कि आपकी डिमांड जो है 6% से आपकी सप्लाई को एक्सीड कर रही थी. इसका मतलब अ लॉट ऑफ द जो डिमांड पुल की मैं बात कर रहा था, बहुत हैवी बर्डन इसका होगा ऑन इन्फ्लेशन. लेकिन इसको लाइक टू पुट इन टू मोर अंडरस्टैंडेबल टर्म, जो हमने अभी डेट शेड की बात करी है और उसमें भी वी स्पोकन अबाउट हाउ द गवर्नमेंट कॉजेज इन्फ्लेशन और स्टेट बैंक बोरोइंग इन्फ्लेशन कॉज करते हैं, उसका भी डिमांड पुल से ही लेना देना है. अब आप अस्यूम करें एक जिस मोहल्ले में रह रहे थे फ्रेंचाइज वाले के, उसमें ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आते और पैसे फेंक देता है नीचे. ठीक है, सबके पास इक्वली ज्यादा पैसे आ गए एकदम से. ठीक है, आपके पास पहले अगर आप 10,000 रुपए खर्च कर रहे थे, आपके पास अब 12,000 रुपए आ गए खर्च करने को. तो व्हाट यू विल बी स्पेंडिंग ऑन दैट बास्केट इंक्रीजेस. तो जब ये हर बंदे के लिए जब ये होगा और उनके पास ज्यादा पैसे होंगे, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस. जब ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस, तो आपकी जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन करा, डिमांड पुल्स प्राइसेस अप. ठीक है, सो ये हेलीकॉप्टर को अब आप स्टेट बैंक से रिप्लेस कर दें. ठीक है, अगर स्टेट बैंक पैसे फेंक देगा इकोनॉमी में, एंड हाउ वो फेंकते ऐसा है कि वो प्रिंट करता है कैश. ठीक है, तो अगर कैश प्रिंट करके इकोनॉमी में डाल दे, तो यही सारी इफेक्ट्स विल हैपन एज इफ के पाकिस्तान को अगर हम मोहल्ला ले रहे हैं, पूरे मोहल्ले के पास बस पैसा ज्यादा आ जाएगा, प्राइसेस विल इंक्रीज इन दैट एरिया. अब गवर्नमेंट स्टेट बैंक से बोलती है प्रिंट करने को, सो एंड में कसूरवार अगर आपको इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत अगर आपको देखना है, जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन आपकी इंप्रूव बढ़ी हैं बिकॉज ऑफ प्रिंटिंग, उसमें आप गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत कसूरवार इधर ठहरा सकते हैं. ये एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन की एक्सप्लेनेशन है, और भी एक्सप्लेनेशन है, मे बी वी विल गेट इन टू दैट इन अ लिटिल वाइल. लेकिन कोई सवाल हो तो.
I think अब जो amendment आई है उसमें now we've stopped, like the practice of borrowing from the state bank has, my understanding is that it is stopped because it's not the best practice out there. आप जब भी government आप जब भी state bank से borrow करते थे, तो when it would print money, तो technically to understand this in more layman terms, पाकिस्तान की रगों में ज़्यादा पैसा दौड़ता था, जहाँ खून होना चाहिए तो वहाँ ज़्यादा पैसा दौड़ता था, और जब पैसा दौड़ेगा तो your ability to spend increases. Demand increases and so price increases. Well understood. Achha. So we've covered ke demand pull kya hoti hai, and we've covered ki state bank borrowing se kya farak padta hai, and that this ties into a previous episode that we did on debt, please go and watch that. Fez essentially broke it down into ke external debt kaisa hai, domestic debt kaisa hai, usse masle kya kya aate hai. Achha, there's this also this thing of I think Fez ke jab aap state bank se borrow karte the, so technically I think it's more like the government borrowing and then the money circling back into their own pockets.
Yeah.
In terms of non-tax revenue, how does that work?
Great question. So ye amendment thodi padhni chahiye hame, because you will see a few changes over there. So ab agar, for example, government state bank ne policy rate, interest rate jo hai, agar 13-14% kar diya, government ko ab zyada sood dena padega to get loans from State Bank of Pakistan ya phir kisi commercial bank ke paas chale jate hain. Commercial bank ke paas jayenge to wo sood government ka banko ko dena hoga. Agar state bank ke paas jate hain to wo eventually jo state bank ka profit hai wo flow ke wapas federal government ko hi jata hai as part of non tax revenue. Humne in cheezon ki baat kar chuki hai. Jab hum non tax revenue ki baat kar rahe the, humne bola tha sabse bada component non tax revenue ka state bank profit hota hai. To agar government स्टेट बैंक जो है पॉलिसी रेट ज्यादा बढ़ा दे, उसको इन द एंड जो इंटरेस्ट मिल रहा है, ज्यादा इंटरेस्ट वो वापस गवर्नमेंट को ही मिल जाएगा. सो इट्स अ लेफ्ट पॉकेट, एक पॉकेट से लेकर दूसरे पॉकेट में पैसे डालना होता है, और ये बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. आप खुद ही सोचे ना कि मतलब अगर आपके पास एक बैंक बैठा हुआ है जो आपका कभी भी इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दे दे, इसमें बहुत मॉरल हैजर्ड के इश्यूज होते हैं इन जनरल. तो इसको, इस प्रैक्टिस को खत्म करते हैं. अब टाइम काफी टाइम लगा है, मैं पिछले 2-3 साल में हुआ है. पहले बोला था हर क्वार्टर में जीरो बोरोइंग होगी, फिर जाके हमने बोला कोई बोरोइंग नहीं होगी. अब बोला है कि कोई क्वाजाई फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी स्टेट बैंक की, एंड इट विल बी कंप्लीटली ऑटोनोमस. आई थिंक बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट है, और होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स पास हो जाएगी.
सो मेरा अगला सवाल आपसे यही था फैज, के इन टर्म्स, इन लाइट ऑफ व्हाट द रीसेंट अमेंडमेंट हैज बीन, yeah, what the focus of the government has been, or whatever the influence of the IMF has been, whatever. How has the role of the central bank changed in terms of inflation or inflation targeting? Are we seeing something different, or is it generally the same?
भाई मैं मेरे हिसाब से पहले तो आप inflation targeting as such कर ही नहीं सकते थे ना. ये जो मैंने left pocket right pocket की बात करी, interest rate का government को कोई फर्क नहीं पड़ा. That's essentially what I tried to explain. थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, yes. जो commercial bank से आप borrow कर रहे हैं, उसका impact है. तो I'm not saying कि इतना कोई ज़्यादा impact नहीं हो रहा था. I'm saying limited impact था of monetary policy in Pakistan. दूसरा limited impact इसलिए होता है क्योंकि हमारा private credit to GDP, जिसकी भी हमने पहले बात कर चुकी है, इतनी ज़्यादा है ही नहीं. ठीक है, अगर 17-18% of GDP आपकी private credit है, उसमें भी बहुत ज़्यादा proportion concessionary loans का है. जिसका मतलब कि अगर पॉलिसी रेट 13-14% भी हो, तो मैं 3-5% का, इफ आई एम इन सर्टेन सेक्टर्स, मुझे लोन्स मिल सकते हैं. तो इस सब को लेके अगर हम चलें, तो इंटरेस्ट रेट चेंजेस का इतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी में या इकोनॉमी में आप पहले कर नहीं सकते थे. अब क्या होगा, अब बहुत क्लियर मैंडेट होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कि अब आप बोरोइंग भी कुछ नहीं कर रहे, तो अब वो ब्लेम गेम जो मैंने अभी लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट की बोली, वो आप नहीं कर सकेंगे. और अब स्टेट बैंक को टारगेट मेरे हिसाब से देने चाहिए हैं कि आपको या तो इन्फ्लेशन 7-8% के बीच में रखनी है, वरना आप जाए गवर्नमेंट के सामने और आप जवाब दें कि क्यों नहीं रही. ठीक है, वन ऑफ द पॉसिबल थिंग्स आपको अभी से एंटिसिपेट करना चाहिए है इसके, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ दो चीजें कंट्रोल इधर कर सकता है. ओके, मे बी 3 चीजें, बट उसको एक्सचेंज रेट को थोड़ा सा बात कर देते हैं. एक तो वो इंटरेस्ट रेट, पॉलिसी रेट आगे भी ऊपर नीचे कर सकता है, और दूसरा मनी सप्लाई. ठीक है, या तो जो पैसे वैसे भी प्रिंट करते हैं ना, मनी डिमांड एक इकोनॉमी में वैसे ही इंक्रीज हो रही होती है, तो वो वैसे भी जो पैसे प्रिंट कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकता है, या तो वापस खरीद ले पैसे. आप क्रश भी करते हैं, आप यू गेट रिड ऑफ मनी एज वेल. तो पूरा स्टेट बैंक का एक काम है मनी सप्लाई कंट्रोल करने का, या फिर इंटरेस्ट रेट को वो करने का. अगर आप पाकिस्तान का मनी सप्लाई ट्रैक करें इन्फ्लेशन के साथ, राइट, फॉर द पास्ट व्हाटएवर वेरी लॉन्ग टर्म होराइजन, आपको दिखेगा वो ऑलमोस्ट एक साथ ही चल रहे हैं. इस एक साथ चलने का मतलब ये है कि जो मैंने पहले कॉज ऑफ इन्फ्लेशन एक्सप्लेन करी ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दैट हैज अ ह्यूज पार्ट टू प्ले इन ओवरऑल इन्फ्लेशन. जब अगर मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन साथ साथ चल रहे होंगे, इसका मतलब इन्फ्लेशन इज अ डिमांड पुल मॉनेटरी फिनोमेना. ये थ्योरी ये बोलती है एंड यू विल सी इट क्वाइट इजीली इन द डेटा एज वेल. स्टेट बैंक क्या नहीं कंट्रोल कर सकता? पिछली दफा हमने ये भी बात करी थी कि एनर्जी प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होती हैं, फूड प्राइसेस बहुत वॉलेटाइल होती हैं और वो शॉर्ट टर्म में आगे ऊपर नीचे बहुत सारी होती हैं. ठीक है, ये मोस्टली जो है फूड और एनर्जी की ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म जो मूवमेंट्स होती हैं वो सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से होती हैं. ठीक है, सऊदी अरेबिया और रशिया का फड्डा हो गया और ऑयल प्राइसेस उन्होंने कम कर दी एकदम से. आप उस पर क्या कर सकते हैं? लाइक व्हाट इज द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गोइंग टू डू ओवर दैट? इतना कुछ नहीं कर सकते. तो आई इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा दें या कम कर दें, ऑयल प्राइस चेंज हो गई और वो पाकिस्तान को इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन के तौर पर लेनी पड़ेगी. ठीक है, आजकल बात हो रही है नेप्रा टैरिफ्स इंक्रीज करने की. ठीक है, आपको बिजली के बिल बढ़ाने की, क्योंकि आपके सर्कुलर डेट का बहुत बड़ा इश्यू चल रहा है पाकिस्तान में. अगर वो इवेंचुअली टैरिफ इंक्रीज हो गए, अभी तो बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है कि ना इंक्रीज करें, अगर वो इंक्रीज हो गए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कम कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. किसानों के लिए शुगर केन की मिनिमम प्राइस रखी हुई है आपने, आपने वीट की मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी हुई है. इन इन सब चीजों इनकी जो प्राइसेस आप इंक्रीज कर देते हैं, और वीट के भी रिसेंटली इंक्रीज हुई है, आई थिंक 1400 से 1600 हुई है और समथिंग लाइक दैट. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकता है? राइट, आपने अगर ये इनपुट प्राइसेस इंक्रीज कर दी, प्रोड्यूसर की इवेंचुअल जो फैक्ट्री में जो भी लगाई हुई है, फिर फ्रेंचाइज वाले की अगर आप एग्जांपल ले लें, अगर इन सारी मूवमेंट की वजह से फ्रेंचाइज वाले की कॉस्ट इंक्रीज हो गई और उसको ये कॉस्ट पास ऑन करनी पड़ गई कंज्यूमर को, आप क्या ही कर सकते हैं? इट इज ऑल्सो ट्रू कि पाकिस्तान में मोनोपोलिस्टिक एक जो नेचर ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है. राइट, फर्टिलाइजर कंपनीज कितनी है आपके यहाँ, और आपको पता है फर्टिलाइजर कंपनी किसकी है इधर. और भी आप फूड कंपनीज देख रहे हैं, बड़ी कंपनी देख लें, सीमेंट में देख लें, थोड़ी बहुत है कार्टलाइजेशन. तो वो पास ऑन जो है फ्रॉम रॉ मटेरियल प्राइस अगर इंक्रीज हो गई टू कंज्यूमर्स, वो काफी आसानी से होता है इन पाकिस्तान. मैंने लास्ट टाइम बात करी थी आपसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की, के होलसेल प्राइस इंडेक्स एक यूजली लीडिंग इंडिकेटर हो जाता है. तो आप देखेंगे वो पहले ऊपर जाता है तो फिर इन्फ्लेशन उसकी थोड़ी देर बाद ऊपर जाती है, वो जैसे नीचे जाता है उसकी थोड़ी देर बाद इन्फ्लेशन विच इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो नीचे जाती है. 2021 में आई थिंक थ्रू आउट आप देखेंगे सप्लाई साइड होलसेल प्राइस काफी ऊपर जा रही है और उसको फिर फॉलो कर रही है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ये बहुत पिछले थोड़े महीने में हुआ है. ऑल ऑफ दिस टू से कि दूसरा जो कॉज ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. राइट, कि आपके रॉ मटेरियल प्राइसेस इंक्रीज हुई जिसकी वजह से आपको प्रोड्यूसर को अपने कंज्यूमर तक प्राइसेस इंक्रीज करवानी पड़ी. यूजुअली ये शॉर्ट टर्म में ही होते हैं क्योंकि मार्केट फोर्सेस इसको या तो ऊपर होने को या फिर नीचे होने को फोर्स कर देती है इवेंचुअली. और आप साइकिल्स देखेंगे तो आप जनरली यही देखेंगे कि छोटे इन द शॉर्ट टर्म जो है सप्लाई साइड शॉक्स ज्यादा प्रिवेल करते हैं, लॉन्ग टर्म में डिमांड पुल इन्फ्लेशन ज्यादा प्रिवेल करती है इन पाकिस्तान एंड इन अदर कंट्रीज एज वेल. दैट्स बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वर्सेस डिमांड पुल इन्फ्लेशन.
सो वी अंडरस्टूड डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, जब डिमांड आगे डिमांड ज्यादा और पोटेंशियल आउटपुट से तो आ गया आपके पास डिमांड पुल, वेरी एनिमेटेड वे जिसमें आपने समझाया. Then there's cost push, and you kind of explained kya state bank kar kya sakta hai. So there are two tools hain, essentially two instruments, money supply and interest rate. Interest rate bada diya, you will be more inclined to save rather than spend. Aapne jab interest rate bada diya to aapki loans ki jo cost hai or to a particular individual wo badh jayegi, so probably will not go and borrow for housing, for cars, for all of those things. So essentially your demand will sort of dry down. So that makes sense. Money supply ki aapne baat ki, helicopter ki example, I love that example ki sabke paas agar paisa aa jaye, ragon mein paisa agar zyada aa jaye, you'll spend more. Acha ye and what the state bank can and cannot do, but based on what the rhetoric has been, right, especially moving towards the political side, it's been ke aaj ki mehngai bhi jo hai wo पुरानी हुकूमतों की कुछ जो है वो कारगर्दगी कह लें या थिंग्स दैट आर पाइल्ड अप उसकी वजह से है. हाउ डज दैट मेक सेंस? उस किन को कसूरवार ठहराएं? حکومت کا کیا اس میں کردار ہے
میں
اور
کردار
پچھلی حکومت سے کیا لینا دینا ہے؟
بہت سمپلی یہ بولوں گا, آپ کردار جتنا کم کر دینا, اپنی جتنی ریسپانسبلٹیز گورنمنٹ کم کر دے ان کنٹرولنگ انفلیشن, اتنا بہتر ہوگا انفلیشن کے لیے. آپ ٹرسٹ می, ٹیسٹ دس آؤٹ فار اے ایئر اور آپ دیکھیں کہ آپ کی انفلیشن کیسے کم ہوتی ہے. لیٹس بریک, جو ہم نے پہلے کیٹیگریز کی بات کری تھی کہ فوڈ انفلیشن کتنی, لائک فوڈ میکس اپ واٹ ایور 35%, ہاؤسنگ میکس اپ اندر 30%. تو ان دونوں کا اگر چیزوں کی آپ بات کریں اور آپ انوالومنٹ کا آپ سوچیں, ٹھیک ہے. آپ نے آج تک کوئی رائس انکوائری رپورٹ کا آج تک سنا ہے پاکستان میں ہوئی ہو رائس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو اب رائس ایک کموڈیٹی ہے پاکستان میں جو کمپلیٹلی مارکیٹ بیسڈ ہے, ٹھیک ہے. ایکسپورٹ مارکیٹ بھی سالڈ ہے, انہوں نے کوالٹی اپنی کنٹرول بھی کیا ہوا ہے, بالکل مارکیٹ بیسڈ اس پہ چلا ہوا ہے. کبھی آپ نہیں سنیں گے منیمم سپورٹ پرائز یا کسان رو رہا ہے رائس کے بارے میں یا وہ کچھ کر رہا ہے. ہر چیز مارکیٹ بیسڈ ہے اور فینٹاسٹکلی ویل چل رہی ہے, ٹھیک ہے. انفلیشن بھی رائس میں آپ کو کموڈیٹی پرائز انٹرنیشنل پرائز سے آپ تھوڑا بہت لیتے ہیں اور وہ بھی انکریز اتنی زیادہ نہیں ہو رہی. یہ کیوں ہے کہ شوگر کے انکوائری کمیشن بیٹھتا ہے یا پھر ویٹ انکوائری کمیشن بیٹھتا ہے, وہی جگہیں جہاں گورنمنٹ کی سب سے زیادہ انوالومنٹ ہے, ٹھیک ہے. کین کمیشن ہے پاکستان میں شوگر کین کمیشن, شوگر کین کے لیے. ویٹ میں بھی منیمم سپورٹ پرائز کی میں نے ابھی بات کری. جہاں آپ پرائز کنٹرولز کے پیچھے جاتے ہیں اتنی آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کو جگہ دیتے ہیں. جتنی آپ پبلک ایڈمنسٹریشن کو جگہ دیتے ہیں اتنی ہی آپ پبلک مس ایڈمنسٹریشن کو جگہ دیتے ہیں. لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ میں فل آپ کو فلو بتاتا ہوں اب ہاؤ آئی گاٹ ٹو دس کنفیوژن. مجھے جب, کیونکہ میں نے بھی ابھی ریسنٹلی پچھلے 3-4 سال میں زیادہ اکانومی کو فالو کرنا شروع کیا ہے, اس سے پہلے چائے پہ ایسے ہی میں بھی بات کرتا تھا, لیکن ڈیٹا بیس میں نے تھوڑے پچھلے سالوں میں شروع کیا تھا. تو میں دیکھ رہا تھا کہ ویٹ کی جو امپورٹس, ابھی ہم ویٹ اور شوگر جو امپورٹ کر رہے ہیں ایز این ایگریکلچرل اکانومی, یہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس لیول پہ کب امپورٹ کرنا شروع کیا تھا؟ تو میں نے دیکھا تھا کوئی 2007-08 اور 2010-11 میں, ٹھیک ہے. اتنی ہی لیول پہ آپ نے امپورٹ واپس کرنا شروع کیا تھا. اور اس ٹائم کی پھر میں نے اخبار کی کلپنگز پڑھنا شروع کیے. آپ اس میں دیکھیں گے مشرف صاحب بول رہے ہیں کہ میں آرمی کو لے کے آؤں گا پرائز کنٹرول کرنے کے لیے, اور یہ شوگر مافیا کا مسئلہ ہے یا ویٹ مافیا کا مسئلہ ہے. آپ زرداری صاحب کو دیکھیں گے وہ بھی یہی بات کہتے ہیں, انکوائری رپورٹ بناؤ, یہ رو بناؤ. آپ فارورڈ دیٹ وٹ ایور 12 years 13 years, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان بھی ابھی وہی باتیں کر رہے ہیں کہ کرپشن کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے. ویٹ انکوائری رپورٹ آئی, شوگر انکوائری رپورٹ آئی, ہاں چلو اب اور احتساب ہو رہا ہے. آئی انڈرسٹینڈ کہ تھوڑی اس کے بعد فالو اپس ہوئے ہیں, پرائسز تھوڑی بہت کم آئیں, اب واپس اوپر جانی شروع ہو گئی ہیں رمضان کی وجہ سے, یا پھر اب تو خیر رمضان ختم ہو گیا لیکن رمضان کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ پرائسز انکریز ہو گئی تھیں. لیکن میرے حساب سے آپ گورنمنٹ انوالومنٹ جتنی کم کریں گے اتنی بہتر ہوگا. دوسرے اینڈ سے آتے ہیں فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ہوگا اگر گورنمنٹ انوالومنٹ آپ کم کریں گے. میرا اس میں سوال صرف یہ ہوتا ہے کہ رائس میں ابھی تک یہ مسئلے کیوں نہیں آئے, رائٹ. رائس آپ کے لیے بہت ہی اچھا ایک بیسٹ کیس ایگزامپل ہے کہ آپ اس کی انڈسٹری کو تھرائیو ہونے دیا آن اے مارکیٹ بیس ریٹ اور وہ بہت اچھی طرح چلی. آئل پرائسز ہمارے یہاں جو ہیں جو ٹرانسفر کرتے ہیں, دیٹ ہیپنز یوز ٹو ہیپن آن اے منتھلی ریٹ, منتھلی بیسس, کہ انٹرنیشنل پرائسز چینج نہیں, اس کے ایک مہینے بعد پاکستان میں چینج کرتے تھے. اب جا کے وہ 2 ہفتے بعد, ہر 2 ہفتے میں چینج کرنے کا ہو گیا ہے. اس کو بھی ہمیں ایٹ این انسٹنٹینیس لیول, آلموسٹ انسٹنٹینیس لیول یا پھر ڈیلی لیول پہ ہمیں لے کے جانا چاہیے, تاکہ ہماری انٹرنیشنل پرائسز ہم تھوڑا اور وی بیکم کلوزر ٹو دوز پرائسز. تو بلیم گیم میں کسی پولیٹیکل پارٹی ون اوور دی ادر کو چوز ادھر نہیں کروں گا. میں بولوں گا آپ جتنی کم انوالومنٹ کریں پرائز کنٹرولز میں, آپ جتنی کم انوالومنٹ کریں ان ٹرائنگ ٹو مینج پرائسز, ٹھیک ہے. آپ کو آرتی کا اگر ہولڈ توڑنا ہے آپ وہ ہولڈ توڑیں, رائٹ. دیر کمپلیٹلی رائٹ. آپ نیوز میں سنیں گے کہ 3-4 روپے کا جو ٹماٹر ہے وہ کسان سے آرتی جب پہنچتا ہے وہ 3-4 روپے کا بکتا ہے, اس سے آگے جا کے 35 روپے کا بک رہا ہے, رائٹ. تو وہ مڈل مین پاور ابھی بہت زیادہ ہے, رائٹ. مڈل مین پاور کیوں اتنی زیادہ ہے؟ گورنمنٹ کو تھوڑی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے. اٹس ون آف دی تھنگز دیٹ شوکت ترین وانٹس ٹو لک ایٹ ایز ویل. آپ سوچیں کہ क्या एक वैक्यूम था उस इलाके में कि आरती की इतनी ज्यादा पावर आ गई और गवर्नमेंट क्या कर सकती है उस पावर को खत्म करने के लिए. आप यू हैव अ लॉट टू डू, आपको क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे, प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स डालने पड़ेंगे, थोड़ा क्रेडिट प्रोवाइड करना पड़ेगा एग्रीकल्चर को ताकि वो आरती पे रिलाय ना करे, एंड देन यू कैन पॉसिबली ट्राई टू इंपैक्ट द फूड कंपोनेंट ऑफ दिस. आप स्टेट बैंक को भूल जाए भी कि फूड और एनर्जी में स्टेट बैंक इतना कुछ कर सकेगा, वो एट अ गवर्नमेंट लेवल आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. दूसरी, आपने हाउसिंग की अगर जैसे बड़ी बात कर दी, हमने बोला है हाउसिंग का मसला हमें कोई 30 साल से पता है, शॉर्टेज जो है 30 साल से पता है. आप हैरान रह जाएंगे अगर आप उसमें देखें तो 30% में से आई थिंक कोई 19-20% रेंट का कंपोनेंट होता है. और आप रेंट प्राइसेस इंक्रीज अगर आप मैप करना शुरू करें, आई हैव नो आइडिया हाउ पीपल आर सर्वाइविंग इन पाकिस्तान. ठीक है, मेरे हिसाब से तो मतलब खौफनाक तरीके से रेंट इंक्रीज हुए हैं पिछले सालों में, और दिस विल कंटिन्यू टू इंक्रीज जब तक आप ये हाउसिंग क्राइसिस आपका सॉल्व नहीं करते. अगेन, नया पासिंग पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नॉट इनफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट के इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कितना हो सकता है. हाँ सही है, रेंट सीकिंग होगी, कंस्ट्रक्शन माफिया को पैसा जा रहा है, सीमेंट माफिया को पैसा जा रहा है. ऑनेस्टली आप जितना पैसा उनको देना है आप साइड में देते रहे, लेकिन ये जो मेन मसला है पाकिस्तान का वो तो सॉल्व करें यार. इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन का जो आपका पूरा इशू है, सो आई थिंक दैट्स रियली इंसटेड ऑफ द ब्लेम गेम आई फोकस ऑन कि आप क्या चेंज इसमें कर सकते हैं. एंड दोज आर द मेन थिंग्स आई थिंक दे शुड डू, लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, एंड 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 yeah, that's basically the biggest suggestion of mine.
Spoken like a true free market person from Harvard Business School. Lekin yaar baat bahut achhi ki hai, and I think we will be doing episodes on this because ye masla kafi ye jo topics hain hassas ke alawa bade ahem hain. Jaise किसी बड़े स्मार्ट आदमी ने ही कहा होगा कि रोटी कपड़ा और मकान, सो एसेंशियली बात उसी पे आ जाती है. बट मकान विच इज हाउसिंग इज अ वेरी सेंसिटिव, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस. द हाउसिंग शॉर्टेज क्राइसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस. रेंट्स के साथ क्या हो रहा है, रोटी एसेंशियली इज फूड, एंड क्लोथिंग का तो मुझे इतना नहीं पता, बट आई थिंक वॉट ऑल्सो मैटर्स हियर इज कि जिस तरीके से मैं देखता हूँ, जब हम बैठते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो बड़ा आसान है कहना, एंड प्रॉब्ली फैज विल बी एबल टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस, कि जब हम द पीपल यू चूज टीम्स, राइट. पाकिस्तान का मसला तो मैं नहीं कहूंगा, बट इंस्टिंक्ट ये है, तौर तरीके आइए कि वी ऑलरेडी चोजन विच टीम वी आर फील्डिंग फॉर. पीटीआई है तो पीटीआई, नून है तो नून, पीपल्स पार्टी है तो पीपल्स पार्टी. अब आप कुछ भी कर लो, योर रेटरिक इज रिवर्स इंजीनियर्ड टू फिट जो भी नैरेटिव चल रहा है. ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा कि यार पीटीआई की हुकूमत में जो है वो 13% तक महंगाई पहुंच गई है, somebody will get up and say कि यार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 27% थी. ठीक है, forgetting the fact कि उस वक्त also the oil prices, and I want Faiz also to speak about imported inflation भी थी, and whether that's true or not, जब 27% थी तो the oil prices were at a record time or all time high. So it's very important to understand कि किसी भी हुकूमत के वक्त जब आप inflation, and we'll probably try and see if we can show you visually के कितना, what has been the history of inflation, but जब आप कोई figure उठाएं तो उस वक्त का context भी जरूर उठाएं कि उस वक्त हालात क्या थे, अब हालात क्या हैं, because again मईशत की तारें जो है वो domestically नहीं और externally outside abroad भी आपकी तारें जुड़ी हुई हैं. So you've spoken about food affairs, you've spoken about, I think, housing. Electricity ke baare mein hukumat kya kar sakti? Like, isn't that one of the things that the government can probably fix? Yes, the government can stay out of the inflation metric for as much as possible. But there are areas in which the government can play a role, right?
Usme bhi ek, to humare sabse bada abhi masla jo hai electricity mein, is circular debt. Theek hai, circular debt hai, humara jo hame paisa, in simple terms, do components hai. Iske ek to hai hame loans, हमने लेने पड़ रहे हैं टू पे फॉर कैपेसिटी पेमेंट्स, क्योंकि हमने पावर प्लांट्स बहुत सारी बना दी, ओवर कैपेसिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की और उसकी पेमेंट्स हमें देनी पड़ रही है रिगार्डलेस ऑफ वो इलेक्ट्रिसिटी बिक्री है नहीं बिक्री. एक ये कंपोनेंट हो गया. एक ये सारे लोन्स के ऊपर जो कंपोनेंट है कि जो सूद देना पड़ रहा है वो भी एक्यूमुलेट हो रहा है पिछले सालों से. ठीक है, ये अभी तक इतनी अटेंशन पे इसलिए नहीं आया था कि हमने पहले भी आई थिंक बात कर चुकी है कि ये ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डज नॉट रियलाइज दिस एज ऑफ नाउ एज डेट, पब्लिक डेट। इस साल से अब बजट से होना शुरू होना है कि आप रियलाइज, आप कन्वर्ट करते रहेंगे इसको अपने पब्लिक डेट के अंदर। तो इसको कम करने के लिए आपको प्राइसेस बढ़ानी पड़ेंगी। अब प्राइसेस अगर आप बढ़ाते हैं तो एवरी वन फ्रॉम द निचला तबका टू द रिचेस्ट ऑफ पाकिस्तान, टू द इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, टू SMEs ऑफ पाकिस्तान, इलेक्ट्रिसिटी यूज अगर कर रहा है, चाहे टैक्स दे या ना दे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, और थोड़े से भी रेट इंक्रीज उनपे बहुत मैटर करता है थ्रू इन्फ्लेशन। तो अब फड्डे जो अब मेरे हिसाब से चलने शुरू हो रहे हैं कि IMF ने बोला आपको सर्कुलर डेट सही करने के लिए आपको अपनी टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे। यस देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि आप अपनी रिकवरी इंप्रूवमेंट करें, आप लोगों से पैसे सही नहीं ले रहे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज आपके जब आप बेसिकली जहां क्रिएट वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग जनरेटेड और जहां तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ट्रांसमिट हो रही है एंड तक, उसमें कोई 18-19% लॉसेज चल रहे हैं जबकि कोई 14-15% अलाउड होते हैं। तो उस लॉस को कम करना, बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ही मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ये ज्यादातर गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन हैं जिनको फिक्स करनी होगी। एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप प्रोविंसेस को डिवॉल्व कर देंगे सारी, ठीक है। तो आप के इलेक्ट्रिक को सिंध गवर्नमेंट को पकड़ा दें, खैर ये भी सुनने में आ रहा है बाय द वे कि वापस नेशनलाइज हो जाएगी के इलेक्ट्रिक, मे बी बाद में बात करते हैं इसके बारे में। क्वेस्को जो क्वेटा की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पकड़ा दें क्योंकि उनकी लॉसेस आर लाइक ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स हायर देन द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सुनने में आ रहा है कि IMF के से हम बोलेंगे नहीं, हम टैरिफ्स इंक्रीज नहीं कर सकते, हम अपने हिसाब से इम्प्रूवमेंट करेंगे, आई थिंक दैट्स वेरी रिस्की। हो सकता है, वैसे शौकत अली ने बोला कि IMF इज सिंपैथेटिक, मे बी जाने दें, क्योंकि साल साल के टाइम में भी अगर आप IMF का प्रोग्राम देखें, कंप्लीटेड प्रोग्राम, वन ऑफ द ओनली कंप्लीटेड EFF जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है, उनकी भी बहुत एक्सेप्शन थी, ठीक है, बहुत एक्सेप्शन करके फिर प्रोग्राम पास कर दिया था। हो सकता है इधर भी वो कुछ ना कुछ कर दें और टैरिफ्स कंज्यूमर्स तक पास ना होने दें। कंज्यूमर्स तक पास हो भी गए तो फिर जाके गवर्नमेंट साथ में सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, राइट, जो SMEs को भी सब्सिडी प्रोवाइड करी हुई है, इंडस्ट्रियल आई थिंक टेक्सटाइल में भी प्रोवाइड करी हुई है, लोएस्ट तबकों को आप वैसे ही ऑलरेडी सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, तो उन सब्सिडीज के साथ फिर इनको खेलना पड़ेगा ताकि एंड यूजर पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। लेकिन मेरे हिसाब से धस लगनी है, अभी लगे बाद में लगे, सूनर रादर देन लेटर एंड गेट इट डन विद, ताकि इम्पैक्ट जल्द से जल्द हो और फिर आप ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ जाएं। एक और तरीका जो है ना सर्कुलर डेट कम करने का, वो है आप GDP ग्रोथ इंक्रीज कर दें। GDP ग्रोथ अगर आप इंक्रीज कर देंगे तो योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन विल गो अप। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अगर इंक्रीज होती है तो जो आप कैपेसिटी पेमेंट्स कर रहे हैं, हाँ इट विल नॉट पूरा पूरी की पूरी कैपेसिटी पेमेंट ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन बहुत हद तक कैपेसिटी पेमेंट्स आपकी कम हो जाएंगी अगर आप डिमांड इंक्रीज कर दें अपनी इकोनॉमी में, और डिमांड इंक्रीज होगी आपकी GDP ग्रोथ के साथ। अभी आप इंक्रीज कर रहे हैं कोई 1.5-2% पे, आपको ग्रो करना है 7-8% पे। ये इंक्रीज जब आप लेकर आएंगे तो होपफुली कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ मोर इलेक्ट्रिसिटी विल एक्चुअली ब्रिंग प्राइसेस डाउन इन द कंट्री। और ये आई कांट क्वांटिफाई दिस एग्जैक्टली फॉर यू बिकॉज डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं इसमें, लेकिन सिग्निफिकेंटली आपकी प्राइस फॉर इलेक्ट्रिसिटी विल गो डाउन।
Very interesting segue, very interesting to a sort of movement into this topic of electricity. But an interesting topic hai. Personally bhi I love to understand ki ye jo puzzle bana hua hai, bada maze ka puzzle hai ki generation kahan se hoti hai, genco kya hai, then disco kya hai, capacity payments kya kin cheezon pe hoti hai, IPPs kitne hain, how many are influenced and owned by the government, things like that. ये पूरा एक ecosystem है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि बिजली वही चीज है जो किसी वक्त में जिसका बिल जलाया जाता था, ये समझाने के लिए कि हम इसकी पेमेंट बंद कर दें, इट इज अ रियालिटी एंड इट इज गोइंग अप बिकॉज द IMF has certain conditions. But a very important thing that you highlighted was, and I want people to go back and have a look at this things as well. This thing as well. Hopefully, we'll be able to find some sort of link where people can go back and have a look at this. कि ऐसा नहीं है कि अगर IMF ने कोई 14 नुकात अपने रख दिए है तो 14 के 14 नुकात इनफोर्स ही होंगे. There are exceptions, there are completed programs. There's been a past of this in which you can draw context के यार होती हैं चीजें 19-20 होगा इसमें. So that is important to understand because हमने एक episode core based on why does Pakistan go back to the IMF again and again. I think that was episode 3. That link will be in the description. Achha. Moving forward, I think sabka sawal yahi hoga, Faiz, ke aapne samajh liya inflation kya hoti hai, uski causes kya hoti hain, hukumat kya kar sakti hai, hukumat ki involvement kya honi chahiye, state bank se borrowing kya hoti hai. All of those things are covered. Now, I think the last and most logical question of this is, moving forward, if I am a Pakistani, given ke नेपरा का बिल आया है, स्टेट बैंक का अमेंडमेंट आया है, IMF की कंडीशंस कुछ हैं दैट आर ऑन द प्लेट, गवर्नमेंट की कुछ प्रायोरिटीज हैं, एंड द गवर्नमेंट हैज अबाउट 2 इयर्स मोर मूविंग फॉरवर्ड इन द 2 इयर्स, गिवन दैट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे हैज शोन के इट इज सच अ बिग कंसर्न फॉर पाकिस्तानीज थ्रू आउट एवरी प्रोविंस, what can we expect, how do we expect inflation, what kind of movement do we expect inflation, what kind of trajectory do we expect inflation to take?
पहले जो बोल दो ना, मैं inflation पहले नहीं कर सकता इधर, because food या overall commodity prices अगर आप देखें internationally, so stepping up from Pakistan, अभी बातें हो रही है कि हो सकता है commodity super cycle चलने वाले हैं. super cycle का मतलब क्या होता है कि COVID के बाद जो एकदम से आपकी pent up demand, एक तो है कि pent up demand अपने कलनी शुरू हुई है कोविड के बाद, तो फिर प्राइसेस इंक्रीज हो रही है ग्लोबली. कमोडिटी अगर आप प्राइसेस देखें ओवरऑल एग्रीकल्चर की देखें कंपेयर टू पाकिस्तान फूड प्राइसेस, एक्चुअली इंटरनेशनल प्राइसेस आर हायर, हैव इंक्रीज बाय मोर देन व्हाट हाउ मच दे हैव इंक्रीज बाय इन पाकिस्तान. ठीक है, बट इंटरनेशनल प्राइसेस का पाकिस्तान पे हमेशा इम्पैक्ट रहेगा, राइट?
आई थिंक बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक ग्लोबल जो सप्लाई चेन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है. And that has affected commodity prices. But I just want you to stop there and also kind of recall and explain to the viewers out there ki kaun si commodities hain that we actually import. Kin wo bahar ki jo kaun si commodities hai jinki price increase hoti hai, to un prices price increases ka Pakistan pe kya
bada aapka components of petroleum or petroleum products ho gaya, theek hai? Wo sare aap import kar rahe hain, and of that as a raw material into a lot of different products. So ये सबसे important आपको oil का राह देना चाहिए. अब palm oil भी आप बहुत सारा import करते हैं. आप food commodities, आजकल आप wheat import कर रहे हैं, आप sugar import कर रहे हैं ताकि आप domestic price stable कर सकें. ठीक है, तो international prices in general will affect Pakistan. Remember बिजली की oil की अगर कीमत ऊपर जाएगी, बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी eventually in Pakistan, because एक fuels का जो component होता है electricity का वो ऊपर चला जाएगा. तो एक वो प्रिडिक्शन, मैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस की अभी कोई प्रिडिक्शन कर नहीं सकता. अभी एक डिसाइड नहीं हुआ है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है ये सिर्फ पेंट अप डिमांड की वजह से और शॉर्ट टर्म में ट्रांजिएंट बोलते हैं इसको, कि शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाएगा, जून जुलाई में एक्चुअली थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा कि ये वापस नीचे जाता है कि नहीं जाता. इफ इट कीप्स गोइंग अप, पाकिस्तान के भी आप एक्सपेक्ट करें उतनी ऊपर इन्फ्लेशन हो जाएगी, फ्रॉम व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट. ठीक है, मेरे हिसाब से दे विल बी एबल टू कम टू देयर 7-9% मीडियम टर्म टारगेट, जो अभी हम 11% में पहुंचे हुए एंड ऑफ द ईयर तक, अब 9% तक एंड ऑफ द ईयर. मैं जब बोलता हूँ मेरा मतलब है जून 2021, क्योंकि फिस्कल ईयर पाकिस्तान का एंड जब होता है, तो आप 9% में थोड़ा सा कम मेरे ख्याल से आप पहुंच जाएंगे, गिवन आप इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज नहीं होने देंगे. ठीक है, अगले 2 महीने में तो आप भूल जाएं इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस इंक्रीज होती. ठीक है, उसके बाद हो सकता है थोड़ी बहुत निगोशिएट करके आप इंक्रीज कर दें. तो इन द नेक्स्ट टू इयर्स आप 7-9% इन्फ्लेशन मेरे हिसाब से एक्सपेक्ट करें. एनर्जी इन्फ्लेशन आप थोड़ी और एक्सपेक्ट करें व्हेन द टैरिफ्स डू इवेंचुअली नीड टू गो अप. फूड, मैं जैसे आपको आई नो कि एवरेज बंदे को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि मैं बोल रहा हूँ कि फूड प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन आती है वो शॉर्ट टर्म होती हैं, लेकिन आप डेटा बार बार देखें ना, पाकिस्तान में एक ही ट्रेंड रहा है कि ये शॉर्ट टर्म फूड इन्फ्लेशन की स्पाइक्स आती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है स्मूथ आप लेवल पे चल रहे हैं और आप इंटरनेशनल से अभी भी थोड़ा बहुत कम है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी इंप्रूव कर दें अपनी, आप इन्वॉल्वमेंट कम से कम करें तो फिर आप देखें कि आपकी इन्फ्लेशन जो है ना इंशाल्लाह 9% तक से कम ही चल रही होगी, और IMF प्रोग्राम में भी यही तकरीबन एक्सपेक्टेशन है। लास्ट थिंग आईड से इसके, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ कोशिश करें कि 7 और 9% तक इन्फ्लेशन लेके आ जाए। बांग्लादेश में अभी कोई 5 से 6% इन्फ्लेशन है, इंडिया में 4 से 5% इन्फ्लेशन है। सो रिमेंबर दैट यू आर ऑलरेडी हायर देन योर कंपेरेबल कंट्रीज, और मैं अभी बात कर रहा हूँ कि आप किसी तरह होपफुली इसको इस लेवल पे नीचे लेके आ जाए। इवन दो इन्फ्लेशन इज नॉट अ बैड थिंग एज यू मेंशनड अर्ली ऑन, आपकी परचेसिंग पावर जब इरोड हो रही है ना, और आप नॉट ग्रोइंग एट द सेम रेट एज बांग्लादेश और इंडिया, और आपकी इन्फ्लेशन उनसे ज्यादा ही है, जो कॉमन पर्सन इन पाकिस्तान इज बीइंग लेफ्ट वर्स ऑफ, एंड आई होप दे फाइंड अ वे टू इंप्रूव दिस।
राइट, सो हमने इस प्रोग्राम का, इस एपिसोड का आगाज इस चीज से किया कि इन्फ्लेशन और गुर्बत ने मुझे कितना बुरी तरीके से अफेक्ट किया है, बिकॉज आई एम वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, एंड वी देन मूव्ड ऑन टू कि इन्फ्लेशन क्यों हमेशा बुरी चीज नहीं है, सो टू अंडरस्टैंड दैट, फिर उसकी कॉजेस क्या हैं, डिमांड पुल क्या चीज होती है, कॉस्ट पुश क्या होता है, स्टेट बैंक की बोरोइंग का क्या फर्क पड़ता है, किस हुकूमत को हम कसूरवार ठहरा सकते हैं, दैट काइंड ऑफ मिथ, टू डू अवे विद दैट मिथ, हुकूमतें कर क्या क्या सकती हैं, वी डिस्कस दैट। सो दिस इज दिस दीज टू एपिसोड्स इन कंजंक्शन आई थिंक शुड बी एबल टू गिव यू वेरी गुड मटीरियल टू डिस्कस एंड टू अंडरस्टैंड इन्फ्लेशन बिफोर यू मेक एनी ब्लैंकेट स्टेटमेंट एंड बिफोर यू मूव ऑन टू एनी स्मार्ट कॉन्वर्जेशन अराउंड दिस टॉपिक। इसके मुख्तलिफ सब टॉपिक्स हैं, वेदर दैट्स बिजली, हाउसिंग, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, वी विल ट्राई एंड कवर दोस इन डिटेल एपिसोड्स। आपने एज यूजुअल घबराना नहीं है, कीप अस अपडेटेड, कीप सेंडिंग अस योर क्वेश्चंस, कीप सेंडिंग अस टॉपिक्स दैट यू वुड वांट अस टू हैव कॉन्वर्सेशंस एंड डिग डीप इनटू विद द हेल्प ऑफ डेटा, एंड या सो अगेन ब्रिलियंट कॉन्वर्सेशन विद यू फैज, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम we will move on to another topic, and till then, Allah Hafiz.